Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
लेकिन उसके बाद भी धुआं निकल रहा है और ये धुआं और कोई नहीं है, ये धुआं है शोक, मोह, जलन, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अज्ञान, यही तो सब धुआं है, धुआं है। और ये हमारे मन का, हमारे अस्तित्व का कच्चापन है। प्रकाशमान आत्मतत्व है, निर्विशोक, शोक रहित है। आत्मा में शोक नहीं है। देखो, अग्नि में धुआं नहीं है और अग्नि से धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां गीली लकड़ी का संबंध हो गया है। ऐसे आपके जीवन में भी दुख नहीं है लेकिन आप दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए कहीं से कोई गलत चीज का संबंध हो गया है। बिना गलत चीज के संबंध से आपके अंदर शोक मोह पैदा ही नहीं होते हैं। अकेले में क्या शोक और अकेले में क्या मोह? अद्वैत में न शोक है और न मोह है। एक बात मैं अक्सर कहता रहता हूं, आप अपने में सुखी हैं, दूसरे से दुखी हैं। हमेशा आप अपने से बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, लेकिन दूसरे से बहुत दुखी हैं। शोक, शोक माने सोच है, ये विचार हैं। हम अपने में बहुत सुखी हैं लेकिन किसी आदमी से बहुत दुखी हैं। घर में बहुत सारे लोग हैं और उनके बारे में विचार करके हम दुखी होते जाते हैं। वो बेटा ऐसा, बहू ऐसी, नौकर ऐसे, पति ऐसा, पत्नी ऐसी। अब हो गया ना, गीली लकड़ी मिल गई है तो अग्नि, लेकिन गीली लकड़ी मिल गई। और जब गीली लकड़ी मिली तो अब धुआं तो निकलेगा ही। अब आपके साथ गीली लकड़ी का संयोग हो गया, उपाधि मिल गई, अब तो आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आएगी, वो टेंशन, डिप्रेशन, सारी चीजें आएगी। निर्धूमक आत्मसत्ता, निर्धूमक है, वहां कोई धुआं नहीं है, ऐसी ज्योति है। ज्ञानी की जो ज्योति है वो निर्धूमक, ज्ञानी शोक नहीं करता है। तत्र कह मोह कह शोक एकत्व मनुपश्यत, और आत्मा का वही वास्तविक रूप है। ईशानुभूत भव्यस्य, और वो आत्मसत्ता ईशान भूत भव्य से, भूत भव्य मानो जो भूत और भविष्य के पदार्थों का वो शासक समष्टि में परमेश्वर और व्यष्टि में जीवात्मा। ये दुनिया में जो भी अनुशासन है, शासन है, ये परमेश्वर का है। कितनी आश्चर्य की बात, अनंत अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों नक्षत्र ग्रह विचरण कर रहे हैं लेकिन कभी आपस में टकराते हैं क्या? वो अपने आप चल रहे हैं, अपनी अपनी कक्षाओं में चल रहे हैं। वो समय पर सूर्य का उदय होता है, समय पर अस्त होता है, उतना समय पर तो हम भी क्रिया नहीं कर पाते। हम भी बहुत बार सोचते हैं कि प्रतिदिन हम प्रेमपुरी में आएंगे समय पर, लेकिन विलंब हो जाता है। लेकिन बिल्कुल बराबर सूर्योदय और सूर्यास्त बिल्कुल बराबर हो, ये कितना बड़ा समय का नियमन है, कितना बड़ा अनुशासन है। एक बार मैं इंदौर में छत के ऊपर गया मैंने देखा वहां कबूतर थे, हजारों कबूतर, और जैसे ही मेरे को कबूतरों ने देखा उड़ गए, एक साथ उड़े वो। मैं आश्चर्यचकित हो गया, एक साथ उड़े वो। और उन कबूतरों का एक दूसरे की जो दूरी थी ना, कम से कम एक इंच रही होगी या उससे भी कम, लेकिन किसी भी कबूतर का, और उतनी तेजी से हम उड़े होते तो अब यहां सत्संग में 100 लोग हैं और ये सब लोग एक साथ भागना शुरू कर दे, एक साथ, पता नहीं क्या क्या हो गया, कितने लोगों की टांगे टूटेगी, कितने के हाथ टूटेंगे, दरवाजा तोड़ देंगे। आप बुद्धिमान हैं, मनुष्य हैं, और उसके बाद भी एक साथ यदि आप कार्य करोगे तो बहुत बड़े खतरे हैं, इसलिए अपने को लाइन लग के चलना पड़ता है। भैया चलना है तो लाइन लगो। अभी सीरिया में रूस के फाइटर बम वर्षा कर रहे हैं, अमेरिका और रूस में समझौता हुआ, उनके विमान 10-10 15-15 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, और उसके बाद भी समझौता करना पड़ा कि आपस में ये हमारे विमान टकरा न जाए। और वो भगवान के जो विमान है कबूतर, हजारों एक साथ उड़े हुए, एक साथ, और एक साथ कोई सीधी दिशा में नहीं उड़े, वो टेढ़े मेढ़े टेढ़े में। और जब उड़ते हुए आए दोबारा टेढ़े मेढ़े आए, वो चुप। मैं आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या बात है। मैंने एक कबूतर को भी ऐसा नहीं देखा कि किसी दूसरे के पंख को उसने टकरा दिया हो, अपने को टकरा दिया हो। नहीं, नहीं नहीं, क्या संतुलन है वो उन्होंने मेंटेन्स, वो जो अपने से दूरी जो मेंटेन कैसे की है, और वो बहुत तेजी से है। वहां कोई फोन करके भी नहीं बताना है कि भैया थोड़ा इधर चलो, कोई गाइडेंस भी नहीं है, और वो कोई निर्णय भी नहीं होता कि भैया किधर उड़ना है, और वो सारे पक्षी एक ही दिशा में चलते हैं, और उधर चलना है इधर नहीं चलना है, ये गाइडेंस किसने दिया उनको, ये सामूहिक निर्णय और गजब का निर्णय। ऐसा भी नहीं कि आधे कबूतर सोचे कि भाई इधर और आधे इधर, और दोनों आपस में टकरा गए, ऐसा भी नहीं, एक साथ निर्णय। और इन सारी चीजों को देखने के बाद आपको परमेश्वर की याद आना ही चाहिए, क्या व्यवस्थित चीज है ये शास्ता, वही है शासक, तो परमेश्वर है, और उस परमेश्वर के शासन में हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत सुरक्षित। ईशानुभूत भव्यस्य, अतीत और वर्तमान का ये शास्ता है, शासन करने वाला है शासन। स एव आद्य स उ श्वः, वो आत्मा आज भी है और वो कल भी है। आप बच्चे थे उस समय भी वो आत्मा था, और आप बूढ़े हो गए तब भी वही है। स एवायम, भगवान ने बोला ना, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन, वही वही है। स एव अयम, भगवान ने कहा कि मैं वही हूं, बहुत पुराना भैया, सृष्टि के आदि में मैंने ब्रह्मा जी को उपदेश किया, मैंने ही सूर्य को उपदेश किया। स एवायम मया तेज्य, मैं वही हूं, वही। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि स एवायम, स एव आद्य स उ श्वः, वही मैं आज हूं और वही मैं कल रहूंगा। ये आत्मा की निरंतरता, आत्मा के अस्तित्व की निरंतरता, आत्मा का अस्तित्व निरंतर है, आत्मा का अस्तित्व काल निरपेक्ष है। पातंजल योग दर्शन जो आप सायं को 5 से 7:30 बजे श्रवण कर रहे हैं 5वें माले पर, बहुत अच्छा विषय, बहुत सुंदर ग्रंथ। स का पूर्वेशमपि गुरु हु काले न अनवच्छेदा। पातंजलि जी कहते हैं वो परमेश्वर सबका गुरु है, सबका गुरु माने ये गुरुओं की जो लंबी परंपरा, उस परंपरा का जो आदि गुरु है, आदि गुरु, आदि शिक्षक। सबसे आदि तो आप ब्रह्मा जी को मानोगे, सृष्टि के पदार्थों में ब्रह्मा जी हैं, और ब्रह्मा जी के भी गुरु कौन है? भगवान है। जन्माद्यस्यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्सुरः। जिन्होंने ब्रह्मा जी के भी हृदय में ज्ञान का उदय करा दिया, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान का उपदेश किया, ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा प्रजाश्रज इति, ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने मेरे को पैदा किया, आप मेरे पिताजी हैं, आप जनक हैं, मैं क्या करूं, आज्ञा क्या है? भगवान ने कहा प्रजाश्रज एको हम बहुश्याम प्रजाए। भगवान ने कहा कि मैं अकेला रहता हूं, अकेला मेरा मन नहीं लगता है, अकेले रहने में मन नहीं लगता है, और इसीलिए मैंने तुमको अपने संकल्प से पैदा किया है। और बात भी सही है, किसी को भी अकेला रहना पसंद नहीं है, भगवान को भी अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। एकाकी न रमते, भगवान को अकेले रहने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए स इक्षान चक्रे उन्होंने संकल्प किया बहुत हो जाऊं। भगवान ने कहा प्रजाश्रज इस सृष्टि का निर्माण करो, अनेकविध सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि सृष्टि का निर्माण तो करो, लेकिन इस सृष्टि का निर्माण करना, पैदा करना, संसार करना, ये तो काजल के कोठरी में प्रवेश करने की तरह है। आदमी काजल की कोठरी में प्रवेश करे और उसके शरीर में काजल न लगे संभव नहीं है। यहां दुनिया में बहुत से अटकाव है, बहुत से भटकाव है, बहुत फिसलन है, हर जगह पर फिसलन है, हर जगह पर। इस दुनिया में भी फिसलन है और भगवान के मंदिर में भी है, ऐसा मत सोचना, आज वहां भी फिसल जाते हैं। ये संपूर्ण जो दुनिया है ना, आपको हर जगह पर फंसाने का उपाय बना के रखते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान मैं दुनिया को बना तो लूं, लेकिन कहीं अभिमान में न फंसू, राग द्वेष में न अटकू, और दुनिया मैंने बनाई और उसी दुनिया में यदि मैं फंस गया, राग द्वेष में मैं फंस गया, तो फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। और राग द्वेष अपने आप में दुख हैं, अपने आप में दुख हैं, आदमी स्वयं दुखी हो जाता है तो वो दूसरे को दुखी करते हैं। ये राग द्वेष सबसे पहले दुखी हमको करते हैं, हमारे अंदर राग है, हमारे अंदर द्वेष है, किसी के प्रति राग हो गया और किसी के प्रति द्वेष हो गया, और जहां राग हुआ तो आदमी सोचता है ये मेरी चीज है, मेरी चीज है, मेरी चीज है, मेरी चीज है, और जिसके प्रति द्वेष हो जाता है तो आदमी सोचता है कि ये मेरी चीज नहीं है, और जहां अपनत्व हो जाता है, अज्ञान जन्य अपनत्व हो जाता है, आदमी उसकी सुरक्षा चाहता है, उसका संवर्धन चाहता है, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसका संवर्धन नहीं चाहता है, उसको माइनस करना चाहता है, उसको तोड़ना चाहता है, उसको घटाना चाहता है, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका कद कम किए बिना हमारा कद आगे नहीं बढ़ेगा या आगे नहीं दिखेगा। ये बात एक नहीं है, बहुत बहुत कुछ है, और यही तो अज्ञान है, यही तो अनर्थ है। यही तो बहुत बड़ा दुख है और हम दुख को घटाते नहीं, हम बढ़ाते हैं। और आश्चर्य की बात, हम चाहते तो है कि हमारा दुख घटे, आदमी दुख को कम करने के लिए एक दुख और बढ़ा देता है। राग अपने आप में दुख है, लेकिन हम उस राग को और पुष्ट करने के लिए द्वेष करते हैं। राग के पोषण का प्रयास ही द्वेष है। हमें डर लगता है कि राग का जो विषय है ये कहीं कम न हो जाए, ये न कहीं खत्म न हो जाए, उसका पोषण, उसके संवर्धन, उसकी सुरक्षा के लिए आदमी द्वेष करता है। लेकिन एक द्वेष अपने आप में एक दुख है, एक दुख को मिटाने के लिए दूसरा दुख खड़ा कर लेता है। फिर जलन है, घृणा है, ईर्ष्या है, बहुत सारी चीजें पैदा हो जाती हैं। एक बड़ा सुंदर वाक्य है, जहां राग ही नहीं है, अजली कर, यहां काम ही नहीं वहां क्रोध कैसे, जहां क्रोध ही नहीं है वहां झगड़ा कैसा, ऐसा लिखा है सुखदेव जी महाराज जी के बारे में। जहां पर कामना है वहां पर क्रोध जरूर पैदा होगा, वहां पर जलन ईर्ष्या जरूर पैदा होगी और वहां से संघर्ष पैदा होगा, वहां से संघर्ष पैदा होगा। ब्रह्मा जी को मालूम था दुनिया को बना तो, लेकिन इसमें बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे दुख हैं, बनाने में दुख हैं, उसके बाद भी संघर्ष है। और वहां वर्णन आता है आपके भागवत में, सचमुच जो आशंका ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने रखी वो प्रकट हो गई, उन्होंने राक्षस पैदा किए। और जब राक्षस पैदा किए तो उनको भूख लगी थी, उन राक्षसों को भूख लगी थी। ब्रह्मा जी ने पैदा तो किया लेकिन ये नहीं सोचा कि भूखे प्यासे पैदा करूं, ये मेरे को खतरा न पैदा हो जाए। और वो भूखे पेशे पीछे राक्षस, और वो भूखे प्यासे राक्षस ब्रह्मा जी को खाने के दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी भागे, अरे बोले भैया मैं तुम्हारा बाप हूं, मत खाओ, तुमको मैंने पैदा किया है। अरे बोले नहीं, हमको तो भूख लगी, ब्रह्मा जी को शरीर छोड़ना पड़ा, ब्रह्मा जी को शरीर ही छोड़ना पड़ेगा। वो ब्रह्मा जी ने सोचा हमको खा जाएंगे, नहीं तो ये शरीर छोड़ो भैया, चलो। भगवान बहुत प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी के, और प्रसन्न होकर के ज्ञान का उपदेश किया, चतुस्सूत्री भागवत का उपदेश किया। ये तो भगवान कहते स एवायम, अरे मैं वही हूं, वही हूं। जिन्होंने ब्रह्मा को उपदेश किया, जिन्होंने मनु को उपदेश किया, सूर्य को उपदेश किया, वही वही मैं हूं। आत्मा की अविच्छिन्न अस्तिता। और इसीलिए पतंजलि कार ने कहा स पूर्व ईशाम अपि गुरु काले न अनवच्छेद, परमेश्वर सबका गुरु है, क्योंकि उनका जो अस्तित्व है वो काल के द्वारा खंडित नहीं होता है। हम काल के द्वारा खंडित होते जाते हैं, वो महाकाल है, काल के ऊपर भी जिसका नियंत्रण है, उस परमेश्वर को काल खंडित नहीं कर सकता है। उनकी अस्तित्व अखंड है और उनकी जो स्मृति है वो भी अखंड है। हमारी स्मृति खंडित है, हमको नहीं मालूम कि हम कब से हैं और कब तक रहेंगे। हमारा अस्तित्व भी परमेश्वर के अस्तित्व के साथ जुड़ा है, लेकिन हमारे अस्तित्व के साथ हमारी स्मृति नहीं है, हमारी स्मृति मिटती जाती। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, तुम्हारे में और मेरे में यही अंतर है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो और मैं अपने जन्मों को जानता हूं। इसलिए श्रुति ने कहा स एव आद्य स ऊष्व, वात्म तत्व काल निरपेक्ष, वो कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। परम पूज्य महाराज श्री ने एक बड़ी सुंदर बात कही, यहां एक बौद्धों के सिद्धांत को सामने रखा क्षणभंगवाद। बौद्ध कहते कि आत्मा क्षणिक विज्ञान रूप है, विज्ञान रूप है, विज्ञान माने बुद्धि, वो विज्ञान कोई आत्मा मानते, बुद्धि कोई आत्मा मानते, और उस बुद्धि को क्षणिक मानते हैं। और बौद्ध दर्शन में क्षणिकत्व की परिभाषा अलग, न्यायमत में क्षणिकत्व की परिभाषा है तृतीय क्षणव्रति ध्वंस प्रतियोगित्व। वस्तु पहले पैदा होती है, एक क्षण में दूसरे क्षण में रहती है और तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, ये परिवर्तन है, ये पदार्थों का परिवर्तन है। जैसे ये माइक, इसका अस्तित्व, इसमें रोम रोम, इसमें कण कण बदल रहे हैं, इसमें एक कण मिटता है दूसरे कण को पैदा करता है, और वो पैदा हुआ कण एक क्षण में रहता है और तीसरे क्षण वो नष्ट हो जाता है। लेकिन बौद्ध कहते हैं पहले क्षण में वस्तु पैदा होती है और रहती नहीं है, दूसरे क्षण में मर जाती है, वो स्थिति काल नहीं मानते। बौद्ध मत में स्थिति काल नहीं होता है, वस्तु का स्थिति काल नहीं होता है, इतनी क्षणिक वस्तुएं, इसका केवल जन्म और विनाश है, इसकी स्थिति नहीं है, यहां कोई रहता नहीं है, यहां कोई रहने के लिए आया भी नहीं है, ये हमारा भ्रम है कि हम रह रहे हैं, ये शरीर रह रहा है अमुक जगह पर, ये तो हमारा भ्रम है, ये अखंड धारा है, अखंड धारा है। वो ज्योति का दृष्टांत देते हैं, जैसे आप ज्योति दिया जलाए और आपको लगता है कि अखंड ज्योति, अखंड ज्योति कौन सी अखंड ज्योति, उसका अस्तित्व प्रवाहित है, वो ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जल रही है, आपको लगता है कि वही है, आपने जो ज्योति जलाई वो ज्योति नहीं है, आप एक ज्योति को भी देख नहीं पाते हैं, इतनी तेजी से वो जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। वहां ज्योति में दो ही चीजें, एक जलना है दूसरा बुझना है, एक जलना है दूसरा बुझना है, जलना है बुझना है, और उसी को आप बोलते हैं कि ज्योति अखंड है। एक दार्शनिक ने कहा कि आप कभी उस नदी में स्नान नहीं कर पाते जिस नदी में आप करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात बोली, आप जिस नदी में स्नान करना चाहते हैं उस नदी में कभी स्नान नहीं कर पाते आप, क्योंकि आप जैसे वहां पैर रखोगे वो नदी तो जा चुकी होगी, वो तो बह गई, वो नदी तो बह गई है, और उसी जगह पर आपको दूसरी नदी मिलती है, लेकिन उसके जैसी मिलती है इसलिए आपको भ्रम हो जाता है कि वही है, वो सादृश्य में भ्रम है। वो दीपकलिका, स्वयं दीपकलिका आपको जो प्रतीति होती है, वो प्रतीति भ्रम है, वो नहीं है, वो तो निकल गई, वो तो जल गई, वो नदी तो बह गई। आपको मैं छूना चाहता हूं लेकिन कभी छू पाऊंगा? आपको मैं छूंगा तब तक तो वो जिसको छूना चाहता था वो तो चला गया है। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं लाखों करोड़ों कोशिकाएं इस शरीर में एक क्षण में पैदा होती हैं, मरती जाती हैं। आप यंत्र से शरीर को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये कितना परिवर्तनशील है, ये तो बदल रहा है, ये तो परमाणुओं का पुंज है। नया कोई यही बात बोली, परमाणुओं का पुंज है ये शरीर, तो परमाणुओं का पुंज है और वो बदल रहे हैं, एक परमाणु दूसरे को पैदा करता है मिट जाता है, और उसी समय दूसरे को पैदा करता है मिट जाता है, इतना तेजी से चलता है। इसी को क्षणिक वाद बोलते हैं, और उन्हें कहा कि ये जो बुद्धि है ना वही आत्मा है, क्षणिक विज्ञान, पहले क्षण में पैदा हुआ दूसरे क्षण में मर गया और बोलते वही आत्मा है। उन्होंने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया, बौद्धों का दर्शन भी बहुत सूक्ष्म है। मांडुक्य कारिका के ऊपर विवाद है, वो हमारा ग्रंथ है कि बौद्धों का ग्रंथ है? आप तिब्बत के बौद्ध धर्म ग्रंथों की लिस्ट में आप देखोगे तो वहां मांडुक्य कारिका भी है। बौद्ध बोलते हैं गौड़ पादाचार्य हमारे थे, ये मांडुक्य कारिका हमारी है, और हम बोलते हैं कि हमारे वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ मांडुक्य कारिका। इसका मतलब कि दार्शनिक विचारधारा की जो मूल अवस्था है कहीं एक मालूम पड़ती है। उन्होंने कहा कि यहां क्षणिक विज्ञान, ये दो विज्ञान धाराएं हैं, एक आलय विज्ञान धारा, दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान धारा। आलय जैसे आप सो रहे हैं और सोते समय आपके अंदर एक विज्ञान की धारा प्रवाहित होती है, बुद्धि की धारा प्रवाहित होती है, वो आलय विज्ञान है। वहां बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करती, वो एक क्षण में दूसरे को पैदा करके वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और वो ट्रांसफर करते हैं, वो संस्कारों को ट्रांसफर करते हैं। वो पहले क्षण का जो विज्ञान है वो मरने के पहले अपने संस्कारों को दूसरे में ट्रांसफर कर लेते हैं, वो दूसरे में पैदा कर लेता है। जो पहले क्षण के उस परमाणु में जो चीजें होती हैं वो दूसरे में पैदा करता है, दूसरे को पैदा करता है, स्वयं मर जाते हैं। और उस समय आपको ऐसा लगता है कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, ऐसा बहुत सुंदर वर्णन है उसका। लेकिन यहां पर श्रुति स्पष्ट कहती है स एव, जो कल था वही आज है। आत्मतत्व क्षणिक विज्ञान नहीं है, आत्मतत्व क्षणिक विज्ञान का दृष्टा है, बुद्धि का दृष्टा है, वो विज्ञान रूप बुद्धि रूप नहीं है। ये आत्मा की अनादिता, आत्मा की निरंतरता का प्रतिपादन किया और अंत में कहा एतद्वये तत्, यही आत्मतत्व है अविनाशी, और उसी अविनाशी आत्मतत्व को जानना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।